जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गाइए, हरे राम राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी ताली बजाए गाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरयेत्। श्रूयताम् श्रूयताम् नित्यम् गीयताम् गीयताम् मुदा चिन्त्यताम् चिन्त्यताम् नित्यम्। श्री चैतन्य चरितामृतम्। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय दो पयार क्रमांक 24। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व यारे कहे नाही यार सम। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे कहे नाही यारसम। वेद भागवत उपनिषत आगम, पूर्ण तत्व यारे कहे नाही यारसम। पूर्ण तत्व यारे कहे नाही यारसम। पढ़ो। तत्व जारे कहे नाही यारसम। गुण तत्व जारे कहे नाही यारसम। ठीक है, शब्द अनुवाद। वेद वेद भागवत श्रीमद् भागवतम उपनिषद उपनिषद आगम अन्य दिव्य साहित्य पूर्ण तत्व पूर्ण सत्य यारे जिनका कहे वे कहते हैं नाही नहीं है यार जिनके समा समान। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की अनुवाद। परमेश्वर वे हैं जिन्हें वेदों उपनिषदों तथा अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किए गए हैं, उनके तुल्य कोई नहीं है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए, परमेश्वर हुए हैं जिन्हें वेदों उपनिषदों तथा अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किए गए हैं, उनके तुल्य कोई नहीं है। तात्पर्य, वेदों में परम सत्य के साकार स्वरूप विषयक अनेक प्रामाणिक कथन मिलते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार से है। ऋग संहिता 1:22 में तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरातितम्। भगवान विष्णु परम सत्य हैं जिनके चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए सारे देवता सदैव लालायित रहते हैं। वे सूर्य देव के भांति अपनी शक्ति किरणों से हर वस्तु में व्याप्त है। वे अपूर्ण आंखों को निर्विशेष लगते हैं। दूसरा प्रमाण नारायण अर्थव शिर उपनिषद 1:2 से, नारायणात एव समुत्पद्यन्ते नारायणात प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलियन्ते अथ नित्यो नारायण नारायण इविदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। नारायण से ही हर वस्तु उत्पन्न होती है, उन्हीं के द्वारा ही हर वस्तु का पालन होता है और उन्हीं में ही हर वस्तु का विलय होता है। इसलिए नारायण शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। इस समय जो भी वस्तु विद्यमान है या जो भविष्य में उत्पन्न होगी वह शुद्ध अर्चा विग्रह नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नारायण उपनिषद 1:4। अभी से प्रसाद आ रहा है क्या? अच्छा। यतः प्रसूता जगतः प्रसूति नारायण ही वे श्रोत हैं जिनसे समस्त ब्रह्मांड उद्भूत हुआ है। ये तीन प्रमाण हो गए।
चतुर्थ प्रमाण है शीर्ष पंचरात्र से परमात्मा हरिर देव हरि परमेश्वर है और श्रीमद भागवत 11:3-34-35 से नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठाम अर्हत नो वक्तुम यूय ही ब्रह्मवित्तमाः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कृपया हमें नारायण के पद के विषय में बतलाइए जो ब्रह्म तथा परमात्मा के नाम से विख्यात है। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु हेतुरस्य यत स्वप्न जागर सुसुप्तिषु सद्वर्णिश्च देहेन्द्रियाषु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तद्वेहि परम नरेन्द्र। हे राजन उन्हें जानो जिनका कोई कारण नहीं है फिर भी वे सृष्टि पालन एवं प्रलय के कारण है। वे चेतना की तीन अवस्थाओं में यथा जागृति स्वप्न तथा प्रगाढ़ निद्रा तथा इनसे परे भी विद्यमान है। वे शरीर इंद्रियों प्राण तथा हृदय को जीवन शक्ति प्रदान करने वाले हैं जिससे वे गति करते हैं। उन्हें परम पूर्ण के रूप में जानो। इस प्रकार से दूसरे अध्याय के अंतर्गत 24 पैर का जो तात्पर्य है यही समाप्त होता है। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वेद भागवत उपनिषत् आगम पूर्ण तत्व जारे कहे नाही यार समा। वेद भागवत उपनिषत् वाह। वेद भागवत उपनिषत् आगम पूर्ण तत्व जारे कहे नाही यार समा। वेद भागवत तत्व जारे कहे नाही जार। वेद भागवत उपनिषत् आगम वेद भागवत उपनिषत् पूर्ण तत्व जारे कहे नहीं यार समा। पूर्ण तत्व जारे कहे नहीं यार समा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्भुक्त हैं। हम लोग का अति भाग्य ही है कि परंपरा के अनुसार अध्यात्म जगत में प्रगति करने हेतु हमें तीन चार ग्रंथ जो मिले हैं अतिशय सैद्धांतिक ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ है छोटी सी भगवत गीता, 700 श्लोकों में सारी ग्रंथ उपनिषद वेदों का सार है, आप सभी जानते हैं। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता पूतम गीता मृतम महत। सारे उपनिषद पढ़ने के उपरांत जो ज्ञान होता है वो गीता पाठकों को हो जाता है। यदि आप गीता के सही सही तात्पर्य को समझ लेते हैं तो ये माना जाएगा कि उपनिषद का सारा ज्ञान आपने हृदयंगम कर लिया है। कितना सिद्धांत, कितना बढ़िया बात है। छोटी सी पुस्तिका है, 700 श्लोक, सारे उपनिषद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता वही कहती है भगवान साक्षात, बल्कि गीता साक्षात पद्मनाभस्य मुख पद्मात बिन श्रुता। ये वेदों तो वेदों को किसी किसी ऋषियों के माध्यम से प्रकट कराया गया है, जैसे मांडुक्य उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, किनोपनिषद, आप देखेंगे ऋषियों का संवाद है। एक ऋषि प्रश्न करता है, दूसरा ऋषि उसका उत्तर देता है। भृगु वै वारुणिम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मन इति, ऐसा प्रश्न उपनिषद में कहा गया है कि भृगु ऋषि अपने पिता वारुणी ऋषि के पास जाकर पूछते हैं, पिताजी ब्रह्म के बारे में हमें उपदेश दीजिए। परंतु गीता तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप, साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। दूसरा सैद्धांतिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। आदि व्यास, वेद व्यास जितने ग्रंथों की रचना करी और संकलन किया है उन सब का सार है सिद्धांत ब्रह्म सूत्र, जिसमें 555 सूत्र होते हैं। उसका अर्थ को समझना बड़ा ही गंभीर और गहन है, इसलिए वेदव्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना करी। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ब्रह्म सूत्र की जो मूल व्याख्या है वो श्रीमद् भागवत है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 25 में इसका उदाहरण है, दृष्टांत है, प्रमाण है कि सारे वेद उपनिषदों का जो सार है वो ब्रह्म सूत्र है और ब्रह्म सूत्र की ओरिजिनल व्याख्या है श्रीमद् भागवतम। और प्रभुपाद जी ने हमें भागवत दिया है, गीता भागवत। और सबसे और सैद्धांतिक ग्रंथ हैं जो रस तत्व और भक्ति तत्व, गुरु तत्व, सारे तत्वों को समावेश करके विराजमान है, वो ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत। भागवत के कई कई गंभीर अर्थों को चैतन्य चरितामृत के जो पाठक है वो ठीक ठीक से समझ लेते हैं। सबको ये हृदबोध नहीं होगा। इति चांस कलापुंस, श्री कृष्ण के केशावतार, श्री कृष्ण का जो अप्रकट लीला, ये सारी बातें चैतन्य चरितामृत के आधार पर ही स्पष्ट होती है। और भक्ति रसामृत सिंधु, ये चार पांच ग्रंथ जो है हम लोगों के सिद्धांत को पुष्टि करने वाले हैं, बिल्कुल भटकन को बंद करा देने वाले ये ग्रंथ हैं। अनेक सिद्धांतों से संपन्न है श्री चैतन्य चरितामृत। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है, इसमें मात्र 62 अध्याय है। आदि लीला में 20, मध्य लीला में 25, सॉरी आदि लीला में 17, मध्य लीला में 25 और अंत लीला में 20 अध्याय, कुल मिलाकर के 17 और 25 42 और 20 62। यदि कोई बुद्धिमान भक्त इन 62 अध्यायों को अध्ययन कर लेता है ठीक ठीक से, ये हमारा दावा है, गारंटी है, संसार में कोई भी पंडित उसको पराजित नहीं कर सकता, निश्चित बात है। इसलिए चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सुकरपुर, दोहे मिली है सुमाधुर्य, गुरु कृष्ण प्रसादे ताहाजे आस्वादेशे जाने माधुर्य प्राचुर्य। बोले कृष्ण लीला चैतन्य कृष्ण लीला अमृतपुर, चैतन्य लीला सुकरपुर। अमृतपुर माने कुछ कुछ पुआ होता है, पुआ के अंदर मसाला डाला जाता है। आप लोग जैसे समोसे खाते हो तो समोसा की जो ऊपरी परत है वो मैदा की बनी हुई होती है, पर भीतर जो मसाला होता है वो डिफरेंट डिफरेंट, कभी आलू का समोसा, कभी पनीर का समोसा, कभी मटर पनीर का समोसा नहीं होता। ऊपरी परत जो है वो मैदा की है, लेकिन भीतर का जो माल है वो है। अच्छा, जैसे आलू का समोसा खाते हो पर आलू में थोड़ा पनीर मिला दिया जाए तो क्या बात है, उसका टेस्ट कुछ और है। सर्दी का मौसम हो, गरम गरम समोसे हो, उसमें पनीर बढ़िया से हो, फिर तो अच्छा। खाली पनीर से नहीं, उसमें थोड़ा गरम मसाला दे दिया जाए तो फिर टेस्ट और होता है। इसीलिए मिठाई के रूप में हमारे, मैंने सुना कि बेकरी में एक समोसा मिलता है, मीठा समोसा। मीठा समोसा में नारियल का जो है ना भीतर मसाला, उसको बंगला और उड़िया भाषा में पूर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर माने मसाला, और कुछ नहीं है, पूरा। तो उस पूर में यदि थोड़ा कपूर का मिश्रण कर दिया जाता है, यहाँ के लोगों को आदत नहीं है पर उड़ीसा बंगाल के लोग कपूर मिलाते हैं। कपूर नहीं है कि कैंफर जो कपड़े में रखने वाला, कपूर होता है जो खाने वाला, पतला पतला, देखा है माताओं, वो कपूर का थोड़ा सा चूर्ण करके उस नारियल और गुड़ का जो पूर है उसमें मिला दीजिए, उसमें खुशबू आएगी और पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज कहते हैं, कृष्ण लीला अमृतपुर, चैतन्य लीला सुकरपुर, दोहे मिली है सुमाधुर्य। दोनों मिला करके जब पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, उसमें मधुरता का और विशेष वर्धन होगा। लेकिन ये मधुरता तब तक नहीं आएगी जब तक गुरु का प्रसाद और कृष्ण का प्रसाद नहीं होगा। गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु कृपा और कृष्ण कृपा, ताहा जे आस्वादे, यदि भाग्यशाली व्यक्ति उसका आस्वादन कर लेता है, से जाने माधुर्य प्राचुर्य। कई लोग भटका देते हैं हमारे इस्कॉन के भक्तों को, तुम्हारे में तो एबीसीडी पढ़ाया जाता है। अरे मूर्खो, एबीसीडी तुमको क्या पता है? से जब चैतन्य चरितामृत में माधुर्य की सीमा है, से जाने माधुर्य प्राचुर्य, माधुर्य की जो प्रचुरता है उसको पता चलता है। परंतु हमारे भोले भाले भक्तों को कई बाहर के लोग भटका देते हैं, एबीसीडी पढ़ते हो। मैंने कईयों से पूछा, क्या तुमने चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किया है? नहीं जी प्रभु जी, नहीं किया। भक्ति रसामृत सिंधु किया है? नहीं करते हैं, केवल लेक्चर सुनने जाते हैं बाहर। इसको हमारे हरियाणा भाषा में कहते हैं, जिन्हें ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट में बपूड़ा डूबन डर रही किनारे बैठ। किनारे में बैठने वालों को सागर की गहराई के बारे में पता नहीं लगता। चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करो, भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करो, तब पता चलेगा कि इसकी गहराई कितनी है। सो हम लोग भाग्यशाली है, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ हमें प्राप्त भए है। मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं, कितने भक्त भाग्यशाली हो जिन्होंने चैतन्य चरितामृत अब तक पढ़ लिया है? अब देखो गिने चुने हैं, दो चार पांच हैं, पूरा पढ़ लिया। कितने दफे पढ़ा है? 10-20 बार? एक बार? हे राम, तुम क्यों दुखी हो गए, हम तुम्हारा मन रख लेते हैं।
ये कोई बात है?
श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, इसलिए प्रथम कक्षा प्रारंभ करने से पहले हमने कबीराज गोस्वामी कृत श्लोक की आवृत्ति करी, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, नित्य नियमित रूप से श्रवण करो। गीयताम गीयताम मुदा, प्रसन्नता के साथ इसका गायन करो। और सुनने से गायन करने से काम नहीं बनेगा, चिंत्यताम चिंत्यताम नित्यम, इसका दिन रात चिंतन करो, तब मजा आएगा। माधुर्य प्राचुर्य, सो ये तो भूमिका के रूप में हमने कहा। इसी सिद्धांत ग्रंथ का आज हम द्वितीय दूसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं। आप सब जानते हैं अंग्रेजी में क्लास भी चैतन्य चरितामृत की चल रही है, हिंदी में भी चल रही है। पिछले हफ्ते मैंने अंग्रेजी में दिया था, हम भूल गए थे कि ये हिंदी अंग्रेजी दोनों बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। अंग्रेजी में जो कक्षा थी वो यही दूसरे अध्याय का 26 नंबर पयार पर था, पर आज ये 24 नंबर यानी कि दो पयार हम पीछे चल रहे हैं, अंग्रेजी क्लास से दो पयार पीछे चल रहे हैं। तो जो भी हो, आज का इस श्लोक है, आज का इस पयार है बंगला भाषा में, वेद भागवत उपनिषद आगम। चार नाम देखो वेदा, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू नहीं है, प्लीज कोई अपने को हिंदू ना कहे, हिंदू विदेशी शब्द है। आक्रांताओं ने हमारे ग्रुप का नाम हिंदू रखा, परंतु है हम सनातनी। यदि 1200-1300 ईसा जो ख्रिस्ट पूर्व ईसा पूर्व आप पीछे जाओगे, जब अफगानी तुर्की ये नहीं आए थे, तब हिंदू शब्द भारत में नहीं था, भारत का ये मौलिक शब्द नहीं है। परंतु बात यही है कि हमको इतिहास के ज्ञान की कमी की वजह से हम लोग जो भी सुने उसको अपना लिया, हिंदुस्तान कहने को हम इचकते नहीं है। नहीं, हमारे देश का नाम है भारत, और भारत के जो निवासी है उसको कहते हैं भारती, और भारतीयों का जो धर्म है उसको कहते हैं सनातन। ये क्लियर कट फंडा है, ये कंसेप्ट है। तो श्री चैतन्य चरितामृत के प्रणेता कहते हैं वेद सनातन धर्म का मूल सिद्धांत, भगवत प्राप्ति का जो द्वार है, जो हरिद्वार है, उसी का नाम है वेद। जैसे बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको हरिद्वार होकर के ही जाना पड़ेगा, ये जो वेद हैं, ये वेद माता, ये हरिद्वार के समान है। वेद के बिना किसी को भी भगवत ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वेद माता पृच्छति, जब वेद माता से पूछा गया तो वेद माता ने हे प्रभु हे हरि आपको प्राप्ति कराने का मार्ग ही बतलाया। मां है वेदा और पुराण आदि है उनके पुत्र, ध्यान देना, वेद है मां और पुराण आदि हुए उनके पुत्र, और संहिता आदि हुए उनकी पुत्री। इसलिए जो वेद है ऋक साम यजुर अथर्व, इसमें भगवान को मूलत ही वर्णन किया गया है। जैसे प्रभुपाद जी ने ऋक संहिता का लिया है, और नारायण अथर्व शिर उपनिषद का लिया है, ये सारा प्रमाण है, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वेद वेद माता कहती है कि भगवान श्री हरि ही है। और ये छोड़िए, एक सरल सा समाधान हम आपको बताते हैं। सारे वेदों का संकलन करता हुए वेदव्यास, सारे पुराणों की रचयिता हुए वेदव्यास, पंच जो ब्रह्म सूत्र है उनके रचयिता हुए वेदव्यास, तो वेदव्यास जो एक जगह में कहेंगे वही बात को वो दूसरे जगह में भी कहेंगे। और वेदव्यास प्रमाण करते हैं श्री कृष्ण ही परम तत्व पूर्ण भगवान हैं। जैसे ईशोपनिषद के पूर्व में जो प्रार्थना है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते, ईश्वर के बारे में कहा गया। ये बृहत आरण्यक उपनिषद का मंत्र है, ये ईशोपनिषद का मंत्र नहीं है। ईशोपनिषद के प्रारंभ में प्रार्थना के रूप में ये इस मंत्र को संयोग कर दिया गया है, परंतु है ये मंत्र बृहत आरण्यक उपनिषद का, पूर्ण है। ये जो श्लोक, ये जो प्यार हमको यहां दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? पूरे चैतन्य चरितामृत के जो आरंभ है उसमें इतना मंगलाचरण दिया गया, आप कल्पना नहीं कर सकते। 17 श्लोकों में मंगलाचरण ही मंगलाचरण है। इतना मंगलाचरण किसी ग्रंथ में नहीं है। भागवत में मात्र 3 मंगलाचरण है, भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2 मंगलाचरण है। वैसे मंगलाचरण ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगल आद्यानी, मंगल मध्यानी, मंगल अंतानी ग्रंथानी प्रथ्यन्ते। जिस ग्रंथ के आदि मध्य अंत में मंगलाचरण होता है उस ग्रंथ का प्रचार बहुत अधिक मात्रा में होता है, अर्थात लोग उसका पठन पाठन अधिक मात्रा में करते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज गोस्वामी 17 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। इतना भारी मंगलाचरण किसी ग्रंथ में नहीं है। 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के तत्वों का वर्णन किया है। 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु पर वर्णन किया है। कितने हो गए? 6, 5, 11। 2 श्लोकों में अद्वैताचार्य पर मंगलाचरण किया है। कितने हुए? 13। 1 श्लोक में पंच तत्व पर किए हैं। 14। 3 श्लोकों में हमारे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 भगवान पर किए हैं, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। 17 श्लोकों में, तो प्रथम अध्याय में जो 17 श्लोक लिख दिए, कविराज गोस्वामी को पता चला संस्कृत में तो सभी लोग विद्वान नहीं होते, सभी लोगों का संस्कृत में बढ़िया ज्ञान नहीं होता। तो जब हम बंगाली भाषा में अथवा उसको समझाएंगे नहीं तो कौन समझेगा हमारे मंगलाचरण को? ऐसे ही लोग स्किप कर देंगे। इसलिए आदि लीला के कई अध्यायों में केवल मंगलाचरणों की व्याख्या है, और पीछे का जो आदि लीला का प्रथम अध्याय है उस पूरे अध्याय में मंगलाचरण के 2 श्लोकों की व्याख्या है, और इस अध्याय में 3रे श्लोक की व्याख्या है। कविराज गोस्वामी कहते हैं 3रे श्लोक, यदद्वैतम् ब्रह्मोपनिषदि तदपश्यतनुभा य आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सो अस्यांश विभवः सर्वेश्वरी पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्ण जगति परतत्त्वं परमिह। इसी श्लोक की व्याख्या करने में पूरा अध्याय कविराज गोस्वामी ने ले लिया है। कितनी दया है, 1 श्लोक की व्याख्या। टोटल यदद्वैतम् ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, इस श्लोक में 6 बातें कही गई है। तनुभा, अंश और स्वरूप, और पीछे के अंग कांति, अंतर्यामी और स्वयं भगवान, इन्हीं शब्दों को समझाने के लिए पूरा प्रकरण है कि जो स्वयं भगवान हैं, जिसको सारे वेद वेदांत कहते हैं, वो ये कृष्ण चैतन्य से अलग नहीं है। जिसको लोग ब्रह्म कहते हैं वो इसे पुरुष के अंग कांति के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और जिसको आत्मा अंतर्यामी कहते हैं वो इसका अंश अंशांश से अधिक कुछ नहीं है। तो 3 बातों के साथ 3 वस्तुओं का मिलन है। अंग कांति, देखो 3-3, अंग कांति ब्रह्मा, अंतर्यामी अंश अंश अंशांश, और स्वरूप भगवान। इस श्लोक में जो कहा गया इसी को ही व्याख्या कर दिया गया। चैतन्य चरितामृत में कहा गया ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अंश स्वरूप 3 विधेय चिन्ह है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान, अंग कांति अंश और स्वरूप, ये तीनों ही तीनों को प्रतिपादित करते हैं। इन्हीं चीजों को समझाने के लिए भगवान पूर्ण है, इसलिए कविराज गोस्वामी इतने परिश्रम पूर्वक कहते हैं वेद, वेद माता इन्हीं को ही भगवान कहता है, कहती है कृष्ण को ही। कैसे? आप लोग गोपाल तापनी उपनिषद पढ़े हो? गोपाल तापनी पढ़े? गोपाल तापनी उपनिषद में एक मंत्र है, सत्पुंडरीक नयनम मेघाभम वैद्युतंबरम द्विभुजं ज्ञान मुद्राढ़्यं वनमालिनं ईश्वरं गोप गोपी गवाव्रतं सुरद्रुमा तलाश्रितं दिव्य अलंकरणोपेतं रत्न पंकज मध्यगम कालिंदी जलकल्लोल संगी मरुत सेवितं चिंतय चितसाम कृष्णं मुक्तोर्भवति संसृतेः। ये गोपाल तापनी उपनिषद का मंत्र है, अर्थ बिल्कुल साफ है। कालिंदी जल कल्लोल संगी मरुत सेवितम, ये जमुना के किनारे त्रिभंग ललित ठाम से ठाड़े रहने वाला पुरुष कौन है? श्री कृष्ण ही तो है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त यमुना किनारे किसने लीला नहीं करी? दो पुरुष आए, एक चैतन्य और एक कृष्ण, दोनों का लीला स्थान अलग है। एक गंगा का किनारा और एक यमुना का किनारा। तो त्रिभंग ललित ठम में बरहा पीढ़म नटवर वपु वेणु गीत में जिसको इंगित किया गया, जिसको दर्शित किया गया, वो नटवर नटवर वपु कौन है? कृष्ण ही है। कालिंदी जल कल्लोल संगी मरुत सवितम चिंतय चितसाम कृष्ण मुक्तोर भवति संसृते। और साफ साफ शब्द दे दिया गया कृष्ण। यदि चेतसा, चेतसा माने मन से कोई व्यक्ति कृष्ण का ध्यान करता है तो निश्चित रूप से वो संसृति यानी कि आवागमन के चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो वेद चार वेद, भागवत, भागवत महापुराण, इसका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद भागवत महापुराण, श्रीमद भागवत पुराण तिलकम, श्रीमद भागवत प्रमाण मामलम। पद्म पुराण में कहा गया पुराण तिलकम, अरे चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रमाणम अमलम, यानी कि भागवत जैसा प्रमाण और कोई ग्रंथ प्रस्तुत नहीं करता। वास्तव में बहुत बढ़िया है। भागवत में भगवान को पूर्ण कहा गया, स्वयं तो असाम्य अतिशय त्रैधीसा, भागवत 3:2:21, स्वयं तो असाम्य अतिशय त्रैधीसा, स्वराज लक्ष्म अप्त समस्त कामा। श्री उद्धव जी वर्णन करते हैं, हे विदुर, कृष्ण है स्वयं तो असाम्य, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, फिर उनके आगे उनके बढ़कर के तो होना कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। श्री कृष्ण से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। स्वयं तू तू माने असाम्य, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। त्रयधीशा अतिशय माने जितने लोग, जितने शक्तिशाली व्यक्ति आएंगे उनसे नीचे रहेंगे, छोटे रहेंगे। और त्रयधीशा तीनों लोक के ईश्वर हुए, ईश्वर है वो, तीनों लोक के जो लोकपाल दिक्पाल है उनके ईश्वर है श्री कृष्ण। परंतु उनको कौन शक्ति सप्लाई करता है? स्वयं तो स्वराज लक्ष्मी, अपनी लक्ष्मी, अपनी शक्ति से वो शक्तिमान है, आप्त काम, उनको किसी की जरूरत नहीं है। भगवान की जो परिभाषित करते हैं पाराशर मुनि, उन्होंने भगवान की एक सुंदर परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? बोले जिनमें भग हो उनको भगवान कहेंगे। तो भग कहे का है? बोले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जसस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चापि क्षणाम भगति अंगना। पराशर मुनि कहते हैं छह चीजें जिनमें हो उनको भगवान कहते हैं। पहला क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य किससे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय ऐश्वर्य? हाँ, ऐश्वर्य किससे कहते हैं? हम तो कहते हैं, आप लोग सुनते हो, पर आप थोड़ा कहो, हम सुनते हैं। ऐश्वर्य तो सभी लोग, माता जी लोग सुने हो, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य माने जन्म लेना। हाँ? हाँ? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐश्वर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जसस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चापि क्षणाम भगति अंगना। ऐश्वर्य माने देखो, हाँ जी देखो, संस्कृत यदि आप जानते हैं तो ऐश्वर्य शब्द का अर्थ आप तुरंत कर लेते हैं। ईश्वरस्य भाव ऐश्वर्य, शासन करने की क्षमता जिसमें पूर्ण मात्रा में हो उसको कहते हैं समग्र ईश्वरत्व का भाव। ईश्वरस्य भाव ऐश्वर्य है ना, समग्र। दुनिया में उन पर शासन किसका नहीं चलता, उनका शासन सब पर चलता है ना। परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई। नारद मुनि ने कहा प्रभु आप तो परम स्वतंत्र हो, आपके सर पर कोई नहीं। ब्रह्मादि जय संग्रह दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपीरि रास मंडल मंडनहा। इस संसार में ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण कुबीर ईश महेश कोई भी हो सब पर दबदबा है कंदर्प का, यानी कामदेव का। कामदेव ने कहा कौन है इस संसार में पहलवान माई का लाल जो हम पर फतह कर सके। बोले ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा अपनी लड़की के पीछे भाग खड़ा हुआ, शंकर मोहिनी के पीछे पागल होकर के दौड़े, बड़ इंद्र इंद्र तो अहल्या के पास आ गया था। बड़े बड़े देवताओं का नाम लीजिए, जब सेनापतियों का नाम आपने ले लिया फिर सेनाओं को कौन पूछता है। बड़े 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 सेनापतियों को हम ऊपर हमारा दबदबा है, पर भगवान मुस्कुराए, अच्छा ब्रह्मादियों को तुमने परास्त कर दिया पर तुम्हारे किले में हम तुमको परास्त करेंगे। बोले किला क्या है, बोले सुंदर जमुना का तट हो, एकांत रम्य उपवन हो, मंद मंदर शीतल समीर बहता हो और सबसे सुंदर खूबसूरत महिलाएं हो, उनके मध्य हम नृत्य करेंगे पर हमारा शुक्र का क्षय नहीं होगा। एवं शशांकांशु विराजिता निशा सा सत्य कामानुरता बलागढ़ शिशिव आत्मनि अवरुद्ध सौरत सा सरत काव्य कथा रसाश्रया। भगवान श्री कृष्ण 16,000 नहीं अनंत कोटि गोपियों के साथ अनंत रात्रि तक विहार किए फिर भी उनका धातु स्खलित नहीं हुआ, कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है। कोई ईश्वर ऐसा? और सब पर शासन है, यमराज को आज्ञा देते हैं, ब्रह्मा को आज्ञा, ब्रह्मा मेरी आज्ञा से सृष्टि करो, शंकर को आज्ञा, शंकर को बृकासुर की विपत्ति से बचाए, इंद्र को तो यहां कितना शासन किया हमारे गिरिराज की तलहटी में, है ना, हाँ जी कहते हुए उनके नाक घिस गई। किसका नाम लेंगे, रुद्र पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी मम इष्ट सोई बालक रामा। एक एक भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आशेश्वर महादेव के रूप में आहा वहां बैठे प्रभु, कब मिलेगा। ना चाहिए तेरे हीरा मोती ना चाहिए कंचन माया, तेरे लाल को दर्श करा दे हो दर्शन को हो आया। भगवान शंकर आकर के माँ यशोदा से कहते हैं अरे माँ ये हीरे मोती तुम देख रहे हमको खुश कर दोगे। मनी मन कहने लगे अरे मेरी पत्नी भवानी वो सारे विश्व की मालकिन है, हमें काय को हीरे मोती दिखा रहे, तो मानो क्या चाहिए तुम्हें। बोले हो अपने पुत्र का दर्शन करा दे हो दर्शन को आया, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। तो श्री कृष्ण सर्वोपरि है पूर्ण है ये भागवत जी प्रमाणित करते हैं, गीता क्या कहती है गीता भी प्रमाणित करती, पिता से लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरोर्गरीयान् न त्वत्समस्याभि पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरोर्गरीयान् न त्वत् समस्त अभ्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव। श्री अर्जुन जी कहते हैं हे प्रभु तीनों लोक में आपका डंका बज रहा है, डंका पिट रहा है कि आप तीनों लोक में लोकत्रय पे अप्रतिम प्रभाव, आपके बराबरी का प्रभाव किसी का भी नहीं है। तुमश्च पिता से लोकस चराचर से, ये चर अचर जड़ जंगम सबके आप पिता हो। उन्होंने कहा आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अर्जुन जी ने कहा है, सब लोगों ने यही कहा है, भगवान की भगवान पूर्ण है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। स्वतः हमारे ईशोपनिषद आप लोग पढ़ते हो, ईशोपनिषद का आठवां मंत्र क्या है, सपर्यगा छुक्रम मकायम अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्य तो अर्थान विदधा शाश्वतेभ्य समाभ्या। भगवान का एक नाम है शुक्र, शुक्र माने शक्तिमान। ये वेदों में जो इंद्र चंद्र वरुण है ना, अग्नि आदि, ये सभी भगवान के नाम ही है। अग्नि के जो अग्नि है वो कृष्ण है, इंद्र के जो इंद्र है वो कृष्ण है, सूर्य के जो सूर्य है वो है कृष्ण। जब ब्रह्म गायत्री आप लोग जप करते हो, तत् सवितुर्वरेण्यम, ये जो सविता है, ये सविता सूर्य भगवान के लिए नहीं कहा गया, ये सविता कृष्ण के लिए कहा गया है, क्योंकि जो सबको प्रसव करे उसको कहते हैं सविता। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो, हे कृष्ण हम आपके तेज जो भर्गो है उसका हम वर्ण करते हैं, हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को बढ़ाओ। इसलिए जो गायत्री जप करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। बार बार आप कहोगे ये ना प्रचोदयात प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, हमारी बुद्धि धीमी पड़ी हुई है, हमारी बुद्धि सुप्त पड़ी हुई है, उसको प्रचोदित करो, प्रेरित करो। गायत्री मंत्र का अभिप्राय यही है। सो मित्रों, भागवत उपनिषद तो मैंने कह दिया, तम ईश्वरम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतिनाम परमं परस्तात नमामि देवं भुवने समिध्यम। श्वेता श्वेतर उपनिषद, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तस्य समस्याभि अधिकस्य च दृश्यते परास्य शक्तिर् विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। हे प्रभु, जितने पति है आप सबके परम पति हो, जितने ईश्वर है आप सबके परम ईश्वर हो। हे भुवन इस हे संसार के मालिक, हे ईश्वर, हे इड्य, हे पूज्य, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। श्वेता स्वतर उपनिषद अध्याय 6 मंत्र संख्या हम समझते हैं कि 21-22 आप प्रमाण देख सकते हैं। उपनिषद आगम, आगम किसको कहते हैं, आगम कहते, देखो वेद को आगम भी कहते हैं निगम भी कहते हैं, पर जहां जुगल शब्द आएगा निगमागम, वहां पर निगम शब्द का अर्थ होगा वेद, आगम शब्द का अर्थ होगा तंत्र साहित्य, तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र माने नहीं कि जादू विद्या करने वाला, काला विद्या जो काला जादू करने वाला शास्त्र नहीं। तंत्र शास्त्र जैसे गौतमीय तंत्र और भी अनेक तंत्र आदि है, अरे जहां पर भगवान को पाने के लिए व्यवस्थित ढंग से कुछ उपाय बताया गया उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र माने व्यवस्था, जैसे हम कहते हैं हमारा शासन तंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, तो तंत्र माने व्यवस्था, विधि, विधान। तो गौतमीय तंत्र एक साहित्य शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये चार क्लियर हो गए, वेद, भागवत, उपनिषद, आगम, पूर्ण तत्व। ये सारे शास्त्रों का आप अवलोकन करोगे तो श्री कृष्ण ही आपको पूर्ण के रूप में ज्ञात होंगे। तो एक बात तो इस प्यार के माध्यम से कविराज हमारे सामने स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि भाई आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, कोई संभावना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जहां है वहां बिल्कुल पूर्ण तत्व के समीप में हो। शास्त्रों का अवलोकन करके उसका सार संक्षेप हम आपको दे रहे हैं। एक तो हमारी शंका का समाधान हो गया, कृष्ण की हम आराधना करते हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण है, इनसे बढ़कर के कोई पूर्ण पुरुष है नहीं। ठीक है, क्लियर। दूसरा प्यार जो है नाही जारसम, उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये तो हमने कह दिया। उनका बल, उनका पराक्रम, उनका ऐश्वर्य, जो हमने 6 भग कहा, ऐश्वर्य माने ईश्वर का भाव, वीर्य, वीर्य माने शक्ति, भगवान से शक्तिमान और कोई नहीं है। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य ऐश्वर्यस्य समग्र वीर्यस्य यश, यश माने कीर्ति, कीर्ति उसी की होती है मित्रों जिसमें सद्गुणों का भंडार होता है। अखिल गुणगण निलय, अखिल है प्रत्यनिक, सारे बुरे गुणों से रहित और सारे सद्गुणों से विभूषित हमारे श्री कृष्ण है। इसलिए यहां जो यश है, यश का अर्थ होता है समस्त प्रकार सद्गुणों के निलय है कृष्णा। कितने हो गए? ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से श्रिय, श्रिय माने संपत्ति, श्रिय माने सुंदरता, श्रिय माने विद्या। ये सारी विद्याएं, सारी संपत्ति, सारी सुंदरता श्री कृष्ण में समाई हुई है। राजस्वी यज्ञ में जब ब्रह्मादि देवताओं ने देखा और भी ऋषियों ने देखा, बोले ब्रह्मा जी ने इतनी कलाकारी लगा करके इसको उत्पन्न किया है। जनमर्त्य लीलो पैकम सुयोग माया बलम दर्शयता गृहताम विस्मापनम स्वस्य च सौहगर अधे परम पदम भूषण भूषणांगम। सारे लोगों को आश्चर्य में डुबा दिए। तो ये तो बराबरी कोई नहीं कर सकता, ज्ञान में भगवान से ज्यादा ज्ञानी कौन होगा। उदाहरण क्या है? बोले एक छोटी सी बातें कही गीता 700 श्लोकों में, आज तक बड़े बड़े मनीषी उस गीता के अर्थ करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। सबसे अधिक भाषा में 5000 कहते हैं भाषाओं में ये गीताओं को समझ, गीता को समझने में कोशिश की जा रही है, पर लोग नहीं समझ पा रहे। आज भी नया है, नित्य नवीन है भगवत गीता। सो मित्रों, नाही जरसम और वैराग्य उनके सामने 56 करोड़ जदुवंशी मार काट करके मर गए, न में लाभ हो न में हानि। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, तुम्हारा एक बेटा चला जाता है तुम कैसे रोते हो? मैं जानता हूं कई माताओं का, एक माँ का एक बेटा गुजर गया, वो माँ आज भी रोती है, 10-20 बरस हो गए, लेकिन श्री कृष्ण के सामने 56 करोड़ जदुवंशी प्रभास क्षेत्र में मार काट करके मर गए, पर श्री कृष्ण उस पिप्पल वृक्ष के सहारे ऐसे मुस्कुराते हुए बैठे थे। है इतना वैराग्य किसमें? किसी में नहीं है। लेकिन इस असम का हमने एक अर्थ लिया है, चिंतन किया है, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा आप विचार कर सकते हो। भगवान में जो दिव्य गुण है, उन दिव्य गुणों में से हमने एक गुण लिया है कृपा, उसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। कैसे? इतिहास प्रमाणित करता है, संसार में 2 बालक हुए, 2 बालकों की विपत्ति समान जैसी है। एक बालक का नाम प्रहलाद, एक बालक का नाम ध्रुव। पीढ़ी के रूप में एक आगे है एक पीछे है। नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से स्वयंभुव मनु, स्वयंभुव मनु से उत्तानपाद और ध्रुव महाराज, ये 5 पीढ़ी है। प्रहलाद जी के लिए 6 पीढ़ी है। श्री नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद। दोनों की आयु समान है 5 बरस और दोनों की विपत्ति भी अपने पिताओं से है, अपने ही बाप से है, कोई दूसरा दुश्मन नहीं था। ध्रुव जी के लिए अपने ही बाप ही दुश्मन बना। ध्रुव बैठने जा रहे थे पर गति नहीं। खैर इतना थोड़ा अंतर है, यहां पर पिता अपनी इच्छा से नहीं कर रहा था, अपनी पत्नी के अधीन होकर के। यद्यपि ध्रुव के प्रति उनके कोई विद्वेष की भावना नहीं थी, लेकिन बाहरी ऊपर से देखा जाए भाई सुरुचि के दबाव में आकर के शत्रु बना, हटा दिया। और वहां तो डायरेक्ट शत्रु है, सर्वोपाय हंतव्य, अरे इनको ले जाओ, प्रहलाद जी को हर प्रकार से मार डालो, है ना। तो दोनों बालक ईश्वर का सहारा लेते हैं। ध्रुव ने ध्रुव को अपनी मां ने कह दिया, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षु मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा, मेरी जैसी कोटि कोटि माता एकत्रित होकर के भी
तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकती, और मैं गारंटी देती हूं कि भगवान की दया तुम पर हो जाए तो कोटि कोटि माताओं के कृपा से स्नेह से भी वो बहुत अधिक है। और जब ध्रुव महाराज आते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण मधुबन में आते हैं, भृत्य दिदृक्षया कृतांजलिम ब्रह्म मयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। और देखो दोनों भगवानों के आचरण भी सेम है, नरसिंह रूप में और हरि रूप में। हरि रूप में आकर के भगवान ने ध्रुव के गाल को छुआ, जैसे बच्चों के गाल को कोई छूता है ना, भगवान ने अपने पंचजन्य शंख के माध्यम से पस्पर्श बालम ध्रुव के गाल को स्पर्श किया, बेटा ध्रुव और दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं, कृपया। मानो कृपा की बारीधारा छूटने लगी, कृपा का समुद्र उस पर उडेल दिया भगवान श्री हरि ने। सतम विवक्षंतम अतद विदम हरि। ध्रुव महाराज ने जो हरि को देखा और व्याख्या करना चाहते थे, लेकिन ध्रुव के लिए दो समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई? हमारे लिए वो समस्या नहीं है, यदि आपको स्तुति रचना नहीं आती तो पूर्व स्तुतियों का पाठ कर सकते हैं, जैसे आचार्यों ने रचना करी उसको आप पाठ कर सकते हैं, दिस इज नॉट प्रॉब्लम फॉर यू। पर ध्रुव के लिए समस्या ना तो उन्होंने पढ़ा है ना तो वो रच पाए, दीज आर द टू प्रॉब्लम्स। तो सतम विवक्षंतम, वो विवक्षा करना चाहता था, पर भगवान ने देखा बच्चा है, 5 वर्ष का है, भाषा नहीं जानता। भगवान ने ब्रह्ममय कंबो वेद रूपी शंख को ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कर, इतना स्पर्श करने मात्र से वेद वेदांत उनके हृदयंगम होने लगा और ध्रुव के मुख से 12 श्लोक में भगवान की स्तुति निकलने लगी। सो अंत प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसुप्तम कृपा। ठीक प्रहलाद जी के ऊपर भी वही कृपा है। स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तच्छृष्णम अधात करम्बुजम। भगवान ने देखा, नरसिंह भगवान ने, कि मेरा बेटा प्रहलाद मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। इतना सुन देखते ही भगवान ने उनको उठा लिया, और जैसे सिंहिनी एक अपने बच्चे को चाटने लगती है, भगवान प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के चाटने लगे। धार धार असुर प्रभावित होने लगा, प्रहलाद यदि मेरे आने में विलंब हो गया तो क्षम्यता, मुझे क्षमा कर देना। तत्सृष्णि दधात, और प्रहलाद महाराज जी के मस्तक पर भगवान नरसिंह देव ने अपना बरद हस्त रखा, ध्रुव के गाल का स्पर्श किया और प्रहलाद जी के मस्तक पर रखा। काला ही वित्रस्त धियाम काल भुजग से भय रहित कर दिया प्रहलाद महाराज जी को। भला विचार करके देखिए, प्रहलाद और ध्रुव दोनों 5 वर्ष के बालक, दोनों पिताओं से प्रताड़ित, और दोनों पर भगवान ने जैसी कृपा करी उसकी बराबरी है कोई करने वाला? भगवान ने जैसी कृपा करी निश्चित रूप से ऐसी कृपा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस श्लोक के सिद्धांत के अनुसार हम लोग इस सिद्धांत पर उपनीत होते हैं कि भगवान वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व कहे जा रहे नहीं जा रहे सम, भगवान की बराबरी किसी भी उपाय से नहीं की जा सकती है। और हम लोग परम भाग्यशाली है, उन्हीं असम उन्हीं कृपालु भगवान के चरणों में हम शरण लेते हैं और हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए मंगलमय और कल्याणमय हो जाएगा। हरे कृष्णा। दो 4 मिनट तो लेट हुआ, तुम्हारे लिए भोजन बहुत इंपोर्टेंट है, ये भागवत इंपोर्टेंट है, देखो हमारे साथ प्रजा है भाई। हरे कृष्णा, धन्यवाद।